आगे, गवर्नर जनरल यदि चाहे तो किसी कानून को बनवा भी सकता है। यदि उसके आदेश पर विधानमंडल किसी विधेयक को पारित नहीं करता तो गवर्नर जनरल क्राउन की अनुमति लेकर उसे पारित कर सकता था। उसे अध्यादेश जारी करने की भी अनुमति थी जो 6 मास तक लागू रह सकता था। यह अध्यादेश अपनी अवधि में साधारण कानून की शक्ति रखता था। पारित हुए कानून के लिए भी गवर्नर जनरल की अनुमति आवश्यक थी और वह बिना कारण बताए हस्ताक्षर करने से मना ही कर सकता था। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल को वास्तविक निषेधात्मक अधिकार थे। बजट के विषय में यह कहा गया कि सरकार विधानसभा में उसे विनियोग मांगों के रूप में प्रस्तुत करेगी। कुछ मदों पर तो सभा को अनुमति और अनुमति न देने का अधिकार था और उन पर बहस हो सकती थी, परंतु कुछ मदों पर मत प्रकट करने की बात ही क्या, बहस भी नहीं हो सकती थी। केंद्रीय परिवर्तनों पर विचार। कार्यकारिणी में परिवर्तनों का कोई विशेष महत्व नहीं था। यद्यपि 8 में से 3 सदस्य भारतीय थे, परंतु एक भी महत्वपूर्ण विभाग उनके अधीन नहीं था। ये सदस्य भी विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। जिस परिस्थितियों में वो थे वो केवल गवर्नर जनरल की हाँ में हाँ मिलाने वाली ही थी। विषयों का विभाजन भी ठीक नहीं था। इसमें बहुत विचार से काम नहीं लिया गया था। आलोचकों के अनुसार व्यापार तथा संपत्ति संबंधी कानून तो केंद्र के पास थे, परंतु आबकारी तथा भूमि पट्टे जैसे महत्वपूर्ण विषय प्रांत को दे दिए गए थे। यद्यपि प्रांतीय सूची के सभी विषय प्रशासन की दृष्टि से प्रांतों के अधीन थे, किंतु कानून बनाने के लिए ऐसा नहीं था। उनमें से कुछ जहां एक ऐसे ही कानून होने चाहिए थे केवल केंद्र के अधिकार क्षेत्र में थे। उदाहरण के लिए स्थानीय स्वशासनिक निकायों को कर लगाने तथा ऋण लेने की क्षमता, संभरण, सिंचाई, बिजली, कारखाने इत्यादि ऐसे विषय थे। प्रमुख कार्यकारी शक्तियां भी गवर्नर जनरल के पास रही, जो क्राउन के प्रतिनिधि भारत सचिव के साथ लगातार पत्र व्यवहार करता था। उसे अपने पार्षदों पर पूरा नियंत्रण था, अर्थात उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं की गई थी। यह कथन सत्य है कि इस एक्ट से केंद्र में उत्तरदायी सरकार तो नहीं अपितु प्रतिचारी सरकार अवश्य बन गई। कार्यकारी परिषदों को विधानसभा का कोई अविश्वास प्रस्ताव हटा नहीं सकता था तथा वे अचल थे, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि वे जो चाहे कर सकते थे। वास्तव में उन्हें कई बार सदन अथवा लोकमत के आगे सिर झुकाया। कुछ सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसा कि वित्त समिति तथा सार्वजनिक लेखा समिति पर नियुक्त किया गया था, जहां वे सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे। प्रश्न या पूरक प्रश्न पूछकर अथवा स्थगन प्रस्ताव रखकर वे सरकार की नीतियों को उघाड़ सकते थे। वे बजट को अस्वीकार कर सकते थे और सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर सकते थे। सभा में निर्वाचित बहुसंख्या को यदि सुना न जाए तो वह सरकार के लिए कठिनाई अवश्य उत्पन्न कर सकती थी। सबसे अनुत्तरदायी कार्यकारी परिषद भी विधानमंडल की अनदेखी नहीं कर सकता था, प्रायः उन्हें सदन की बात स्वीकार करनी ही होती थी। प्रांतीय सरकार में परिवर्तन, द्वैत शासन लागू करना। कार्यकारिणी में परिवर्तन। 1919 के एक्ट में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रांतीय प्रशासन में आया। जैसा मंटफोर्ड रिपोर्ट में कहा गया था, प्रांत है जहां पहले पहल उत्तरदायी सरकार स्थापन करने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए, जिसमें अपने उत्तरदायित्व को ध्यान में रखते हुए उन्हें अधिकाधिक वैधानिक तथा प्रशासनिक स्वतंत्रता देनी होगी। एक्ट की प्रस्तावना में भी यही भाव व्यक्त किए गए थे। इस उद्देश्य से प्रांतों में द्वैत प्रशासनिक प्रणाली आरंभ की गई। इससे प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया, आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर अपने उन पार्षदों की सहायता से चलाता था जिन्हें वह मनोनीत करता था, तथा उन हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से चलाता था जिन्हें वह निर्वाचित सदस्यों में से नियुक्त करता था। ये लोग सदन के प्रति उत्तरदायी होते थे, परंतु वे गवर्नर की इच्छा पर ही पदों पर बने रह सकते थे। 100% राज्य सचिव तथा 100% गवर्नर जनरल को इन विषयों पर हस्तक्षेप करने का अधिकार बहुत सीमित था, परंतु आरक्षित विषयों में यह अधिकार पूर्णतया बना रहा। आरक्षित विषय ये थे, वित्त, भूमिकर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जनजातियां, मुद्रणालय, समाचार पत्र, सिंचाई तथा जलमार्ग, खाने, कारखाने, बिजली, गैस, बॉयलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक झगड़े, मोटर गाड़ियां, छोटी बंदरगाहें, वर्जित क्षेत्र तथा सार्वजनिक सेवाएं। हस्तांतरित सूची में शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, कृषि, सहकारी समितियां, पशु चिकित्सा विभाग, मत्स्य पालन, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल तथा माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा आग्रहार दान इत्यादि सम्मिलित थे। इन पर मंत्री लोग गवर्नर को परामर्श देते थे। इन हस्तांतरित विषयों में निर्णयों के लिए मंत्रियों को मिलकर नहीं बैठना होता था। गवर्नर केवल व्यक्तिगत रूप से ही मंत्रियों से परामर्श करता था, अर्थात इसे मंत्रिमंडल की भावना नहीं थी। दोनों विषयों से संबंधित मामलों, विशेषकर करों के मामलों में दोनों को सम्मिलित मंत्रणा होती थी, परंतु गवर्नर का निर्णय अंतिम होता था। विधान परिषद में परिवर्तन। प्रांतीय विधानमंडलों में भी परिवर्तन हुए। प्रांतीय विधान परिषदों को विधान परिषदों की संख्या दी गई। उनका अधिकार क्षेत्र बड़ा हो गया, जो कि भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न था। इन प्रांतीय परिषदों के न्यूनतम 70% निर्वाचित होते थे, 20% अधिक शासकीय थे और शेष मनोनीत होने थे। प्रांतीय विधान परिषदों के चुनाव की विधि सीधी थी। प्राथमिक मतदाता सदस्यों को चुनते थे, परंतु मतदाताओं के लिए अधिक संपत्ति की योग्यता सांप्रदायिक था। वर्गीय चुनाव मंडलों को था। कुछ संप्रदायों को विशेष महत्व देकर चुनावों को विशेषता थी। प्रांतीय विधान परिषदों के कार्यक्षेत्र में भी 7वां सदस्य को बोलने था अधिकार तथा स्वतंत्रता दी गई। हुए प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते थे, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, किसी भी प्रांतीय विषय पर कानून बनवा सकते थे। यद्यपि प्रत्येक पारित विधेयक पर गवर्नर की सहमति आवश्यक थी। सदस्य बजट को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते थे। यदि गवर्नर चाहे तो